यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जिन आकस्मिक घटनाओं की चर्चा अभी की गई उनमें से अधिकांश व्यक्ति विशेषों से संबंधित हैं। इतिहास में व्यक्ति विशेष, विशेष तौर पर नायक या वीर या विश्व के ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष की भूमिका अभी मुख्य समस्या बनी हुई है। इतिहास में व्यक्ति विशेष एक आंतरिक मूल्य है। ये हम ही हैं जो व्यक्ति विशेष बनकर प्रश्न पूछ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक और यह अधिक स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति विशेष स्वतंत्र नहीं है, वह किसी समाज का एक अभिन्न अंग है और आर्थिक, राजनैतिक एवं सैद्धांतिक कारक घटनाओं की सामान्य दिशा को नियत करता है। और तब भी वह दृढ़तापूर्वक कहता है कि मनुष्य और इतिहास निर्वैयक्तिक शक्तियों से निर्धारित नहीं होते, यह मनुष्य का अनुभव नहीं है। ऐतिहासिक विकास के मध्य में भी मनुष्य अपनी कुछ स्वतंत्रता कायम रखता है। द हीरो इन हिस्ट्री के विशद अध्ययन के पश्चात सिडनी हुक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इतिहास की एक सामान्य दिशा है जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी सीमित स्वतंत्रता कायम रखता है। इतिहासकार भी व्याख्या देता है, किंतु वह केवल यही बताता है कि क्या घटित हो गया, और वह भी साधारण बोलचाल की भाषा में। वह आवश्यकता को पूरा करने के लिए कतिपय सामान्यीकरणों का उपयोग कर लेता है, जैसे शक्ति भ्रष्ट करती है और वह सरकार गिर जाती है जो आर्थिक अस्थायित्व को कायम रखने में असफल हो जाती है। यद्यपि एक कहावतों से कुछ अधिक ही है, तथापि इन्हें इतिहास को निर्धारित करने वाले नियम तो मुश्किल से ही कहा जा सकता है। व्याख्या का प्रश्न अर्थ के प्रश्न से गहन रूप से संबद्ध है। यदि इतिहास बोधगम है तो वह अर्थवान भी है। यदि इतिहास मनुष्य द्वारा रचित है तो यह मनुष्य के स्वभाव को ही प्रतिबिंबित करता है, और इसीलिए अन्य मनुष्य भी इसे समझ सकते हैं। जब मनुष्य किसी बात को समझता है तो वह उसके अर्थ को देख लेता है। इतिहास मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन है, और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम स्वयं के लिए तो विमर्श पूर्वक कर्म करता है। दूसरों के क्रियाकलापों को समझने की लालसा, जिसका विस्तार ही इतिहास है, मनुष्य के इस विश्वास की साधारण अभिव्यक्ति है कि उसने जो कुछ कर्म किया है वह सार्थक है, और वह चाहता है कि दूसरे लोग भी इसे उसे इसी प्रकार से देखें, समझें। मार्क्स और फ्रायड की मुख्य चुनौती यही थी कि उन्होंने इस दृढ़ धारणा की सरल अभिव्यक्ति को संकट में डाल दिया, और तब भी प्रत्येक ने अपने तरीके से यह दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य स्वयं को और अन्यों को किस प्रकार अधिक अच्छी तरह समझ सकता है। मनुष्य स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में कर्म करता है। यह बात समाज या संस्थाओं के लिए उतना ही सही है जितनी व्यक्ति के लिए। विश्लेषणात्मक दार्शनिक मूल्य के प्रश्नों से दूर रहते हैं, उनको तर्क और सूक्ष्मता में रूपांतरित करना कठिन होता है, किंतु शब्दों के अर्थ की उनकी खोज भी एक बृहत्तर अर्थ की खोज का ही एक अंग है। मनुष्य की संपूर्ण बौद्धिक जिज्ञासा यदि समस्त जगत या जीवन का नहीं तो कम से कम उसके एक अंश का तो अर्थ समझने की होती है। अर्थ के साथ समस्या यह है कि यदि ऐतिहासिक प्रक्रिया को इससे बाहर कोई अर्थ दिया जाए तो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खोता हुआ प्रतीत होता है। यदि ऐतिहासिक प्रक्रिया को परमात्मा के विधान का ही विस्तार होना है तो ऐसी हालात में मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विकास नहीं कर रहा है। यदि वह आर्थिक नियमों का ही विस्तार है तो मनुष्य की बौद्धिक जिज्ञासाएं और प्रेरणाएं सीमित हो जाती हैं, और तब ऐसे मूल जिनका आर्थिक महत्व नहीं हो निरर्थक हो जाते हैं। इतिहासकार ने तो किसी भी ऐसे आरोपण को अस्वीकृत कर दिया है और जोर देकर यह कहा है कि अर्थ इतिहास में अंतर्निहित रहता है और उसे वहां खोजा जाना चाहिए। इस मत के साथ समस्या यह है कि यह हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि कोई अंतिम या सार्वभौम या समान सत्य नहीं है। जो भी सत्य है वह किसी अमुक काल या देश के लिए है। फलस्वरूप यह मनुष्य की नौका को इतिहास के सागर में बिना किन्हीं पथ निर्देशक नक्षत्रों एवं लंगर के छोड़ देता है। कुछ लोग किसी तत्वमीमांसीय संस्थान के अंग बनना पसंद करेंगे। विश्लेषणवादी दार्शनिक इन बेहतर प्रश्नों को दूर हटाना चाहता है, किंतु वह यह स्वीकार करता है कि यह इतिहासकार का कार्य है कि वह इतिहास को बोधगम बनाए, और यह एक प्रकार का अर्थ है। WH वाल्स ऐतिहासिक प्रक्रिया के किसी भी तत्वमीमांसीय अर्थ की संभावना को या विधि के द्वारा दिए गए किसी भी अर्थ या व्याख्या को हेम्पेल स्पष्टतः अस्वीकार करता है, किंतु वह डिल्थे का अनुगमन करते हुए यह अनुभव करता है कि ऐतिहासिक घटनाओं की अंतः संबद्धता इतिहास को समझने के लिए उपयुक्त आधार प्रस्तुत करती है और यही इसका अर्थ है। फिर भी जियाफ्रे वैराकल्फ पश्चिमी सभ्यता की 20वीं शताब्दी की नैतिक विफलताओं को इतिहासवाद की उस प्रवृत्ति के कारण मानता है जो सभी सत्यों को सापेक्ष मानती है। वह एक ऐसे नए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण और मूल्याभिमुख इतिहास लेखन की वकालत करता है जो समकालीन व्यक्ति को नए लक्ष्य का बोध करा सके। टाइनबी का दावा है कि वह इतिहास प्रक्रिया की दिशा से अवगत है और एक नए आध्यात्मिक जागरण की संभावनाओं को स्पष्ट करता है यदि पश्चिमी जगत अनुकूल या समुचित नेतृत्व एकत्रित करे। राइन होल्ड निबूर आधुनिक क्रिश्चियन दृष्टिकोण के अनुसार एक लक्ष्य उन्मुख इतिहास की स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें परमात्मा का विधान, व्यक्ति की संकल्पेच्छा और मनुष्य की नैतिक समस्याएं सभी का समाधान हो जाएगा। इतिहासकार EHR समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रगति में अपने विश्वास को पुनः व्यक्त करते हैं एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अज्ञात है किंतु जिसको हम उत्कंठापूर्वक खोजना चाहते हैं। इतिहासकार जिस बात को प्राप्त करना चाहता है, अर्थ का प्रश्न उससे घनिष्ठ रूपेण संबंध है। इतिहास की विधि प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुकी है और विचार की ऐतिहासिक विधा स्पष्ट नजर आती है तो भी समाजशास्त्र के विश्लेषण की विधि बहुत कुछ इतिहास के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मानवीय ज्ञान में इतिहास भी अपना आंशिक योगदान करता है और शायद यह सबसे अधिक निरापद मत है, परंतु इतिहास के सिद्धांत और व्यावहारिक पक्ष के विकास के इस अध्ययन में यह सर्वत्र स्पष्ट रहा है कि इतिहासकार चाहे उसकी इच्छा हो या न हो, या चाहे वह जाने या न जाने, जीवन के मुख्य प्रश्नों से बराबर टकरा रहा है। प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों के लिए इसी तरह के आधार के सभी दावों के प्रयास असफल हो गए हैं। अब यह इतिहासकार के लिए शेष रहा है कि वह ऐतिहासिक ज्ञान के सूक्ष्म स्वभाव की परख करे, उस कार्य में विश्लेषणवादी दार्शनिक समस्याओं को स्पष्ट करके सहायता कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कला पर कितना कम कहने की आवश्यकता पड़ी है। मनुष्य के विभिन्न बौद्धिक क्रियाकलापों में निश्चित तौर पर ही प्रकृति विज्ञान और ललित कलाएँ साहित्य को सम्मिलित करते हुए विधि और उद्देश्य की दृष्टि से दो चरम स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतिहास कहीं इन दोनों के मध्य में है। यदि यह विज्ञान नहीं है तो क्या यह कला है? क्या यह मूल रूप से व्यक्तिगत सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है? जबकि अच्छा इतिहास लेखन साहित्यिक होता है, किंतु विज्ञान का ऐसा कोई दावा नहीं होता क्योंकि उसकी विशिष्ट शब्दावली होती है और वह साधारण भाषा का उपयोग करता है। इतिहास कभी भी अपने इस कार्य से मुक्त नहीं हो सकता कि वह स्वयं को अटल और अपरिवर्तनीय तथ्यों पर आधारित करे ताकि अतीत का वैसा ही चित्र तैयार कर दे जैसा वह वस्तुतः था। इसकी अभिव्यक्ति की अनेक सीमाएं हैं जो कि साहित्य और कला के अध्ययन के क्षेत्र में अज्ञात हैं। यह एक बौद्धिक विषय है। यह तथ्य कि इतिहास के कलाओं से सुनिश्चित संबंध के बारे में अधिक चर्चा बहुत कम की जाती है। यह इस बात को सूचित करता है कि आधुनिक विश्व की में प्रकृति विज्ञानों का बौद्धिक साम्राज्य है, किंतु अब इतिहास इसकी एक सांघातिक पकड़ से मुक्त हो गया है जिसकी वजह से हमें विज्ञान का अनुकरण करना पड़ता था और अब यह अपनी भवितव्यता के प्रति सचेत हो गया है। इस बात को इतिहास के सामाजिक विज्ञानों के साथ आदान प्रदान में देखा जा सकता है और साथ ही ऐतिहासिक कार्य का यह भी एक मुख्य अंग रहेगा कि वह मानव इतिहास के पृथककृत स्तरों की व्याख्या करे। अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इतिहास 19वीं शताब्दी की भांति केवल वर्णनात्मक बन जाएगा। विश्लेषणवादी दार्शनिकों की चुनौती ने इस विश्वास को स्वयं दार्शनिकों में भी और अधिक दृढ़ता प्रदान कर दी है कि ऐतिहासिक विचार की पद्धति वैज्ञानिक से भिन्न है और इतिहास अभी भी मनुष्य के जीवन में अर्थ प्रदान करने का दावा करता है, जबकि दर्शन ने अपने इस उत्तरदायित्व को त्याग दिया है। यह सही है कि अतीत में अधिकांश लोगों ने अधिकांश समय अर्थ की प्राप्ति के लिए ऐतिहासिक प्रक्रिया से दूर और बाहर की ओर ही झांका है, किंतु आधुनिक मनुष्य ऐसे मत को मानने में अब आनाकानी करता है जिसमें इतिहास की अस्वीकृति अंतर्निहित हो। आधुनिक मनुष्य इतिहास की चेतना से संयुक्त हो गया है और उसकी अर्थ की खोज ने उसे विचार की ऐतिहासिक विधि की ओर उन्मुख तथा उस पर आश्रित कर दिया है। समाप्त।